ਮੰਨਦੇ ਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਿਕਸ਼ਾ ਏਅਰਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਲ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਆਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੰਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਸੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਬ ਨਾ ਫਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਔਰ ਰਿਆਤ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਚਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਉਸਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਬੋਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਉੱਤੇ? ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਇੰਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ CSIS ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਨਿਕਸ਼ਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਮਲਕ, ਤੇ ਮਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਲੈਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ $200,000 ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਡਾਓ ਉਸ ਨੂੰ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ CSIS ਤੇ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਨਿਕਸ਼ਾ ਬੋਮਬਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਾ ਕੇ ਲਾਇਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੋਮਬਿੰਗ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਔਰ ਰਾਹ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਤਸ਼ਵਿਸ਼ਨਾਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਗੁਫਤਗੂ ਰਹੇ, ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਜੀ ਬੋਲ
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ।
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਨਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਲਗ੍ਰਮ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਟੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ। 30,000 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਬੁੱਧਾ ਹੋਣ, ਜ਼ੋਰਾਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ, ਹਿਊਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜੈਂਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਪੀਸ, ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਆਈ ਸਿਨਸੀਅਰਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ।
थैंक यू डॉक्टर साहब, तुहाडे नाल आइंदा भी गल होंदी रहेगी, बहुत शुक्रिया जी। हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर बख्शीश सिंह। अभी हम एक वक्फे पर चलेंगे और जब वक्फे से वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त क्या मसला बना हुआ है। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
द व्यूज एक्सप्रेस्ड ऑन द प्रोसीडिंग प्रोग्राम मे नॉट नेसेसरली बी दोज ऑफ द ओनर और मैनेजमेंट ऑफ WTOR रेडियो स्टेशन।
क्या आपके पास आइडियाज या तजावीज हैं कि आप एक नई बैरूनी तफरी जगह में क्या देखना चाहते हैं? सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आपके ख्यालात का इजहार करने के लिए सितंबर 23 सैटरडे सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ब्रैम्बली लिमिटेड कम्युनिटी पार्क में इनवाइट करता है। ये खुद वहां ऑन साइट मौजूद होंगे, आवाम से उनके ख्यालात तजावीज हासिल करेंगे कि ये जगह कैसी नजर आ सकती है। ये एक फ्री इवेंट है, सबके लिए खाने पीने तफरी सरगर्मियाँ मौजूद होंगी। मजीद जानने के लिए brampton.ca/engage पर विजिट करें। ब्रैम्पटन ऑन स्टेज 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन पर अहद रजामीर को हैमलेट के किरदार में देखकर खुश और वेलकम करते हैं। हैमलेट जो आजकल के दौर के लिए गजबनाक, तेज रफ्तार, इंतकाम और दागदार मोहब्बत की कहानी है। क्या आप हमारे डेनमार्क के शहजादे के साथ बाइज्जत, खुशहाली, पागलपन के दरमियान लाइन पर चलने की हिम्मत करते हैं? ये तब्दीली सिर्फ सच्चा सानिया ही ला सकता है। देखना मत भूलिएगा हैमलेट 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन में। सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें brampton.ca।
A child's smile can make a big difference when it comes to their health. If you have kids under 12, earn less than $90,000 a year and do not have private dental insurance, you may be eligible for the new Canada Dental Benefit. You could get a direct payment of up to $650 per child for dental care. Now that's something to smile about. To learn more, visit canada.ca/dental. A message from the Government of Canada.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਵੀਂ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 2023 ਦੀ ਫੋਰਡ ਐਸਕੇਪ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 13 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1.99% ਦਾ APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ 2023 ਐਸਕੇਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ। ਅੱਛੀ
ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੋਮਸ ਰਿਅਲਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੀ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਸੈਲਰ ਲੀਡਸ, VIP ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, 1-on-1 ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਟੀਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ with private room, in-house mortgage and lawyers team, in-house projects investment opportunity, phir der ka di, aao te join karo Executive Homes Realty ya call karo 905-890-1300 ya visit karo ehrb.ca।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक्ट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप 2 कारों और 1 घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773, ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
जी वेलकम बैक। हम अब फियाज भाई के पास जरा दूसरी अंदर की पाकिस्तान की स्टोरियां सुनना चाहते हैं कि भाई जो है वहां पे क्या चल रहा है। फियाज भाई जरा दसो दे सही, ये जरा एक बारी फिर शेर साहब कब आ रहे हैं? हमने सुना है अक्टूबर 21 तक आ रहे हैं।
पाकिस्तान काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर बख्शीश सिंह से पंजाबी में बात करने के बाद आपका वो अभी पंजाबी से वापस उर्दू में आप स्विच नहीं हुई?
नहीं, लगते ना लाहौर में एक बारी फिर
मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल में हैं। सॉरी, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी।
हाँ।
लाहौर पहुंच चुकी थी, अनोशे रहमान एज एडवांस पार्टी के तौर पर लंदन से आई थी।
अच्छा।
और वहां आके उन्होंने जाति उमरा में जब आके चार्ज संभाला तो वहां स्टाफ को उन्होंने हदायत दी कि अब ये मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए यहां तैयारियां कर रही हैं, मैं इंचार्ज हूं सारी तैयारियों की जब तक मरियम नवाज नहीं आती। और यहाँ इस घर से शहबाज शरीफ और हमजा की और किसी और की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ नवाज शरीफ की बात होगी। उन्हें खतरा था कि हमने इस तरह का अब ये लाइन लेनी है, ये इशारा मिल गया था कि अब शहबाज शरीफ और हमजा की बात नहीं चलेगी, नवाज शरीफ साहब की चलेगी। उसके बाद मरियम आ गई, उन्होंने लाहौर में कॉर्नर मीटिंग शुरू कर दी और बड़ी तैयारियां हो गई और जितने इनके टिकट होल्डर थे पिछली दफा के और आइंदा जो टिकट के उम्मीदवार हैं उन सब के लिए टारगेट्स तय कर लिए गए, उनको बताया जाना टारगेट दिया जाने शुरू कर दिए गए कि आपने फलां हल्के से कोई कौमी असेंबली का उम्मीदवार है टिकट का तो उसने 10 बसें लोगों की भर के लानी है और जो सूबाई असेंबली का है उसने 5-6 बसें भर के लानी है। तो पूरे पंजाब में और एजेके और गिलगित बल्तिस्तान तक और जनूबी पंजाब हर जगह उनके सारा प्लान बन रहा था। लेकिन कल मियां साहब अचानक टेलीविजन पर नमूदार हुए और उन्होंने वही बात वहां से शुरू की जहां उन्होंने गुजरांवाला में जो स्पीच की थी जिसमें उन्होंने एक स्पीच में 11 दफा जनरल बाजवा उस वक्त की आर्मी चीफ और 11 दफा उस वक्त की DGISI जनरल फैज हमीद का नाम लेके उन पर तनकीद की थी। मियां नवाज शरीफ साहब परसों फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने फिर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद पे जो है वो उन पर तनकीद शुरू कर दी। उस पर बताने वाले बताते हैं कि मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब को पिंडी वालों ने बुलाया कि मियां साहब ये क्या मामला है, हम तो आपको ऐसा डील कर रहे थे और आपको ढील दे रहे थे और ये सारी ढील इस नतीजे में थी और आपको पता है इमरान खान को तो उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया है। अब इमरान खान, उन्हें कोई नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं है, हमारे पिंडी वालों को उन्हें पता है कि ये बंदा हमेशा क्या करता है हमारे साथ और इसके दिल में हमारे लिए रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं है, ये सिर्फ इक्तदार की खातिर लालच में ये बंदा आ रहा है पाकिस्तान और इसे इक्तदार कुर्सी का लालच है। हमने जब नवाज इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया है और पॉपुलैरिटी पब्लिक अभी भी इमरान खान के साथ है, हमने तरीके इस्तकाम पार्टी वाला भी ड्रामा कर लिया, लोग उधर नहीं जा रहे, हमने वो परवेज खटक वाली पार्टी वाला भी कर लिया सिलसिला, लोग उसके पीछे भी नहीं जा रहे, लोग पीपल्स पार्टी के पीछे बिलावल और असदारी के पीछे भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, लोग इमरान खान के पीछे से नहीं हट रहे और वो बंदा बाहर भी नहीं जा रहा, वो किसी सूरत हमारी कोई बात नहीं मान रहा। तो फिर अमरे मजबूरी वो वापस मियां नवाज शरीफ साहब से रजू फरमा रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब को क्योंकि एकदम उन्हें जज्बात आते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को ये रिपोर्ट्स मिल रही थी कि आपके हाथ में तो कोई बयानियां ही नहीं है, बयानियां तो इमरान खान के हाथ में है। तो मियां साहब जब कैमरे के सामने आए, मीडिया सामने आए, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर वहां से ही कैसेट अपनी शुरू कर दी कि वो जनरल बाजवा ने यह किया और फैज हमीद ने यह किया और उन्होंने उसमें साकिब निसार का नाम लिया, उन्होंने जस्टिस एजाज़ुल अहसन का नाम लिया, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नाम लिया, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार का नाम लिया, उन्होंने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल का नाम लिया। अब आप मदलिया से भी लड़ाई लेंगे, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फॉर एग्जाम्पल कमर जावेद बाजवा परसों तक आर्मी चीफ थे, मियां नवाज शरीफ साहब से ये पूछा जाए कि अगर वो अच्छे नहीं थे और उन्होंने आपको निकाला, क्योंकि पहले जब आप निकले थे तो आप तो हर जगह ये ढंढोरा पीट रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, अब अगर आपको लंदन की पुरफजा मकाम में 4 साल रहने के बाद आपको ये पता चल गया है कि आपको किसने निकाला, तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आप अगर अब पब्लिक को जाके बताएंगे कि मुझे कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, उमर अताब बंदियाल, जस्टिस गुलजार, जस्टिस एजाज़ुल अहसन, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार, इन सब लोगों ने मिलकर मुझे निकाला है, आप ये इंकशाफ अगर पब्लिक के सामने करेंगे तो पब्लिक ये नहीं पूछेगी कि मियां साहब जब आपको उन्होंने निकाला था तो फिर आप उनको एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे, आपने तो उन्हें 3 साल की और एक्सटेंशन दी थी, इसका मतलब है कमर जावेद बाजवा साहब उस वक्त ठीक से जब एक्सटेंशन दी थी, अगर उस वक्त ठीक थे तो उससे पहले आपने गुजरांवाला के हवाले से तकरीर की थी और पाकिस्तान छोड़ के आप गए थे, उस वक्त वो खराब थे, तो आप एक तय कर लें कि कमर जावेद बाजवा इज अ गुड पर्सन और ही इज अ बैड पर्सन। तो मियां नवाज शरीफ साहब अब बुरे फंसे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब को हमारे पिंडी वालों ने बुला के कहा है कि ये डील और ढील सारी साइड पे रह जाएगी, हमें वापस इमरान खान के साथ रुजू करने में कोई एतराज नहीं है, पब्लिक भी जब उसके पीछे है और वो कहता भी है कि मेरी आर्मी पाकिस्तान की आर्मी मेरी आर्मी है और मैं आर्मी के साथ मुझे काम करने में कोई अर्ज नहीं है और मैं सबको माफ भी कर दूंगा, इमरान खान ये भी कह रहा है, पब्लिक भी इमरान के पीछे खड़ी हुई है, आज अगर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह दे कि हाँ इमरान खान आओ इलेक्शन लड़ो, पब्लिक तुम्हें जीतने देती है तो जीत तुम लड़ो, तो लोग तो पाकिस्तान के खुश हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 85-90% पब्लिक जो है जितने सर्वेज आ रहे हैं उसमें वो इमरान खान के साथ हैं, तो आर्मी के तो सिर्फ इमरान के लिए हां करने की देर है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में ये एक बारी फिर शेर का कोई नारा लगाने वाला कोई बंदा नहीं होगा। वो सारे इसलिए इधर आ रहे थे क्योंकि इमरान खान से भी उन्हें है कि शायद वो वापस आ गया तो शायद हमें माफ नहीं करेगा और शायद वो सारे जो रशिया के हवाले से दी इंटरसेप्ट डॉट कॉम की दोनों स्टोरीज जो हैं वो दोनों स्टोरीज ये प्रूव कर रही हैं कि इमरान खान को पीठ की पीठ में छुरा घोंपा गया था। अगर इमरान खान दोबारा के वो इन्वेस्टिगेशन खुलवा ले तो सीधे सीधे केसेस बनते हैं बगावत के उन लोगों पे जिन्होंने इमरान खान को रशिया भेजा और उसके बाद इमरान खान को इक्तदार से हाथ धोने पड़े। तो इमरान खान को सिर्फ ये गारंटी देनी है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आगे देखूंगा, इस मुल्क की तरक्की के लिए सफर पे गामजान हो जाऊंगा और जो आपको भी मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, मैं अच्छी टीम लेके आऊंगा, जो मेरे उस्मान बुज़दार टाइप जो बैड गवर्नेंस के मेरे एक्सपीरियंसेस वो भी नहीं दोहराऊंगा और मैं कौम जिस तरह चाहेगी उस तरह हम आगे बढ़ेंगे। इमरान खान के तो सिर्फ हाँ करने की देर है,
लेकिन अगर मियां नवाज
जी साहब के बड़े मसाइल हैं,
आगे उसने फिर कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर क्या होगा। और इन्होंने हमारे हुक्मरानों ने तो फियाज भाई ये जो है लंदन जाना तो ऐसे कर दिया है जिस तरह लाहौरों कोई पिशौर जा रहे हैं
और
या पिंडी से लाहौर जा, इतने पैसे हैं इनके पास, टिकट कितने का है, टिकट कितने का लंदन का,
आपको पता है ना कि अभी जो केसेस वापस
ये कहां से आ रहे हैं पैसे।
अभी जो एक और परेशानी भी हुई है ना उनके लिए, एक और परेशानी ये हुई है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था इनका अंदाजा था कि 16 को वो चार्ज संभालेंगे नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और 17 को जो है वो सारा उनका वो उसको उड़ा देंगे उमरता बंदयाल के मामले को और 18 को हमारी जो है वो सब हम गुड्डी गुड्डी हो जाएंगे और आ जाएंगे। लेकिन वो अभी आपने हियरिंग देख ली और टीवी पे पूरी कौम ने देख ली, और टीवी पे पूरी कौम को दिखाने के बाद अब काजी फायज ईसा साहब और उनके जो दोस्त हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये गलती कर दी हमने, क्योंकि इसमें तो हमारी सारी कारकर्दगी पब्लिक के सामने आ गई है
उसकी, उसने बिलावल जरदारी ने बड़ी आज तारीफ की है उसकी।
अच्छी बात है, होना चाहिए, टीवी पे दिखाना चाहिए, हर इंपॉर्टेंट केस लाइव कौम को देखना चाहिए, लोगों को पता चले कि कौन से जज जो है उनकी क्या अहलियत है, कौन से सीनियर वकील जो करोड़ों रुपए की फीस लेके वहां जाते हैं और वहां जाके उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकलते, बोल नहीं सकते, तैयारी करके नहीं जाते और काउंटर क्वेश्चन अगर दो जज कर लें तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये करोड़ों रुपए लेने वाले जज ये वकील जो हैं एक्चुअली ये कितने पानी में हैं। अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, लेकिन अब वो इसे रीविजिट करने लगे हैं। उन्होंने एक कमेटी बना दी है अतर मिनुल्ला की सरबराई में और उसके साथ मोहम्मद मजहर दूसरे जज लगा दिए हैं, वो इस पे देखेंगे कि हमें दिखानी है या नहीं दिखानी और वो अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को देंगे और फिर डिसाइड किया जाएगा, लेकिन दिखानी चाहिए। हम कहते हैं देखे कौम, खुद देखे अपनी आंखों से, वो हम रिपोर्टर्स पे ट्रस्ट ना करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हर रिपोर्टर अपने नजरिए से देखता है और शायद हम उस तरह दिखा भी नहीं सकते। टेलीविजन के कैमरे ऑन हो तो हमारा काम आसान हो गया रिपोर्टर्स का, कौम खुद देख ले और लोग खुद फैसला कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी काजी फायज ईसा साहब को सोचना पड़ेगा कि जब कौम देखेगी तो कौम का अपना एक माइंड भी बनेगा, उस माइंड जो बन जाएगा, जो एक लोगों का राय आमा बनती है, उस राय आमा को के सामने आप कैसे खड़े होंगे। इमरान खान ने एक राय आमा बना ली, अब उस राय आमा के सामने कोई चीज खड़ी नहीं हो पा रही। इसी तरह अगर आप टेलीविजन पर दिखाएंगे तो अदलिया के बारे में भी लोगों की एक राय आमा बनेगी। राय आमा बना लेना आसान होता है, उसके सामने खड़ा होना मुश्किल होता है, तो ये शायद मुश्किल उनके लिए होगा। अब ये जो नैब के केसेस वापस हुए हैं और आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई है और उसमें कोई तकरीबन वो केसेस जो वापस आए हैं उसमें कितने केसेस हैं, 1200 अरब के केसेस हैं जो वापस हुए हैं और उसमें सबसे ज्यादा केसेस जो XMNAs और MPAs के आए हैं उसमें सबसे ज्यादा केसेस पीपल्स पार्टी वालों के हैं।
लेकिन पीपल्स पार्टी के जो बीबी जरदारी हैं हमारे, उन्होंने तो उनसे आज क्वेश्चन किया है, उन्होंने मीडिया ने, और उन्होंने कहा जी कि ये तो अब नैब के सारे केसेस खुल गए हैं। मुझे तो वैसे बड़ी अब हैरत बिल्कुल आपको भी नहीं होनी चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रही कि सारे अगर फिर से लंगड़े लूले बीमार होकर फिर हॉस्पिटल में सारे हमारे लीडर चले जाएं। लेकिन वो उन्होंने आज कहा है कि ये इनका कोई असर नहीं होगा हमारे पोल्स के ऊपर जो आने वाले हैं, ये बिलावल साहब ने कहा। उन्होंने कहा कौन सा रहे ना नैब के।
अच्छा, बिलावल साहब जो कह रहे हैं ना, बिलावल साहब पॉलिटिशियन जो होता है वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये टोटल केसेस जो हैं इसमें 450 अहम शख्सियात हैं जिनके केसेस खुल गए हैं आज, और उनमें से जो उनमें रिटायर्ड फौजी अफसरान भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं। नैब के ज़राए के मुताबिक 1809 रेफरेंसेज हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, 700 अरब रुपए के करप्शन केसेज हैं, 7 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, 14 एक्स चीफ मिनिस्टर्स के केसेस बहाल हुए हैं, उनमें से 78 मिनिस्टर्स के बहाल हुए हैं, 176 पार्लियामेंटेरियंस के केसेस बहाल हुए हैं और 114 सीनियर अफसरान के केसेस बहाल हुए हैं। और ये जो अभी इतने आए हैं इसमें से शहबाज शरीफ साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और जो नंबर आ रहे हैं 89 मेंबरान असेंबली हैं, साबिक मेंबरान असेंबली पीपल्स पार्टी के हैं। नून लीग दूसरे नंबर पे है 62 और तहरीके इंसाफ वाले भी पीछे नहीं है, 47 इनके MNAs और MPAs के केसेस खुले हैं, जिनमें MQM के 8 के खुले हैं, काफ लीग और JUI के 12 अराकीन असेंबली के केसेस खुल गए हैं। ये केसेस खुलने की खबर जो है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, किसी भी पार्टी में अगर किसी ने को करप्शन किया है तो उसका एहतसाब होना चाहिए, और ये एहतसाब होगा तो हम किसी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे।
थैंक यू,
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये था आज का 12वां खिलाड़ी। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना और अपने गिर्द नवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।
نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے۔ میں تو خادم ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میری سبب سے ہے، میرا شعر ان کے ادب سے ہے، میرا ذکر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو منقبت کا بھی حق ادا۔ میں تو پن پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔
سامع کرم، ٹورانٹو گرد و نواح کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا، تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشهد ان محمد رسول اللہ، اشهد ان محمد رسول اللہ، على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفلاح حي على الفلاح
سن رہے تھے آپ پروگرام ساز و آواز اور میرا نام عارفہ مظفر صاحب. یہ چینل آپ کا اپنا ہے, ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے. بہت سی جگہوں پہ جب آپ کو اسٹیٹک ملتا ہے تو ہمارا لوکل نمبر 6478724900 آپ پروگرام کو بالکل سن سکتے ہیں اپنے فون پہ, اور جب آپ کا امپورٹنٹ فون آئے گا تو آپ اپنی کال لے لیجئے گا. اس پروگرام کو ہم یہیں اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. میں نے ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان تمام کو ضرور یاد رکھیے جو آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں. کہتے ہیں اچھا کرو, اچھا بو, اچھا کاٹو. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور وہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کی منزلوں کو آسان کرے, قبروں کو جنت کے باغوں کا حصہ بنا دے. آمین سم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد دے اور رزق عطا کرے اپنی جناب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہم تمام کو اپنا محتاج کرے, کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کرے. ان سب کے ساتھ جانے والوں میں مظفر علی کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. اجازت دیجیے گا, ایک دعا کی طرف بڑھتے ہیں میری جانب سے. خدا حافظ.
کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں.
کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں,
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kilohertz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music. Thank you.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
एक थी लड़की दीवानी कोई तरसाना था कोई तड़पाना था वो मिले इस तरह दिल भी धड़काना था कोई तरसाना
Thank you. खुशबू तुझो पास आई, तुझो पास आई, तुझो पास आई।
दूजे से हुए जुड़ा जब एक दूजे के लिए बने जहाँ मैंने पाया कभी सोचा न था ये मिलों दूर होगा साया क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना
listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Naan Kebab, Modern Afghani Kitchen, Laziz Afghani Grill Kebab, Chapli Kebab, Chopan Kebab, Lamb Shank, Chicken Korma Plate, Family Platter, Kebab Wrap, Fries, Mantu, Bolani, Firni aur sab ke liye bahut se mazedar khane. Ab aapke shahar Mississauga mein ek aur nayi location ke saath. 5042 Satellite Drive, Unit F3, Mississauga. For orders and reservations, visit nankebab.ca.
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम मोहम्मद सिद्दीक ऑल द सॉल्यूशन पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80% मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं पुरसकून जिंदगी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577
भाई सस्ता ला ला इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला
ओहो सल्ला भैन जी कनाडा आ गए तुसी इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी फ्रूट्स दाला सब्जियां सब कुछ बहुत कट कीमत विच मिलदा
ए आ जी एशियन फूड सेंटर इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज फल फ्रूट दाला सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे प्लेटां बाटियां सब कुछ मिलदा है साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है एशियन फूड सेंटर दी Ontario which in 9 locations which on jithe marzi aa jao
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसेमंद नाम हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से رابطہ करें रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस रिन्यूअल